नमस्कार
जी मैनेजमेंट। और एक और जानकारी मैं अपने श्रोताओं को देना चाहती हूँ, वो श्रोता जो गृह विज्ञान से अवगत नहीं है, अक्सर तक हम सोचते हैं कि गृह विज्ञान केवल खाना पकाने की विद्या है, और ये जो बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे श्रोताओं में, हमारे आम जनता में होती है, हम उसको इन कार्यक्रमों के जरिए दूर करना चाहते हैं।
बिल्कुल,
गृह विज्ञान असल में एक विज्ञान है जो ग्रह को सुव्यवस्थित करता है, और इसका जो वही इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है,
बहुत ज्यादा विस्तृत। इसीलिए इसमें हमने इनकम मैनेजमेंट,
इनकम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया है।
इनकम के बिना तो कुछ चल नहीं सकता,
बिल्कुल,
और हम सब पूरा जीवन उसमें लगा देते कि कैसे कुछ इनकम की जाए कि हम अपना जीवन यापन कर सके। और पिछली बार हमने बहुत ही प्लेजेंट टॉपिक लिया था,
सेविंग्स की बात करी,
अरे नहीं हमने एक्सपेंडिचर की बात करी थी
पूजा। लेकिन मां पहले तो हम वो करेंगे ना, इनकम पहले लेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर करेंगे।
लेकिन मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट जब कभी भी बजट बनाती है तो सबसे पहले वो एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है, और उस एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए वो सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढती है कि भाई अब ये तो हमारे खर्चे होने हैं, लेकिन ये खर्चे पूरे कहाँ से होंगे, तो उसके लिए वो सोर्सेज ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें टैक्सेस लेना है, किन किन पर हमने ड्यूटीज लगानी है, ताकि वो विद इन द लिमिट्स हो सके। तो इसी तरह से होना भी यही होता है कि सबसे पहले तो कोई भी पैदा होते ही नहीं कमाने लगता, उस पर खर्चे शुरू हो जाते, चाहे वो खर्चे उसके माँ बाप बेयर करें या कोई और फैमिली मेंबर बेयर करें। धीरे धीरे जब वो कोई फैमिली में मेंबर बड़ा होता है और मैच्योर होता है, और वो समझने लगता है कि जो मेरे खर्चे हैं मुझे अब उनको खुद उठाना है या मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, तो वो कोई इनकम जनरेशन की एक सोर्स ढूंढता है। नाउ दैट is going to be done by normally three different ways. Either he is going to join some employment, or he is going to work as a professional, or maybe he is going to conduct a बिजनेस एक्टिविटी।
अरे पीयूष जी, मैं अभी उसी में सोच रही हूँ कि जो बहुत सारे ये हमारे लर्नर्स जो जुड़े हैं हमारे साथ NIOS में, जिन्होंने एडमिशन्स लिए हैं, उसमें भी तो ये चीज आती है कि वो जिंदगी को और बेहतर तरीके से वो इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इसीलिए वो एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, और जो किन्हीं कारणोंवश दूसरे स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं वो इस तरह से जाते हैं। तो ये बहुत बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है हमारे भारतवासियों को कि वो अपने जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने की कला को यहाँ से सीख के जाएं।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात की कि पहले गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर इंडिकेट करती है और उसके बाद इनकम जनरेशन की तरीके सोचती है, लेकिन एक फैमिली के साथ इस तरह से नहीं होता। आप उतना ही खर्च सकते हैं जितनी आपकी इनकम
है।
पिछली बार हमने एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर प्लान पे बात की थी, फिर हमने ये भी बात की थी कि अगर ऐसा हो कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से स्लाइटली ज्यादा हो तो हम क्या करें। तो इसलिए हमने एक बताया था तरीका, वेज ऑफ सप्लीमेंटिंग इनकम, आप किस तरह से अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें कुछ डायरेक्ट मेथड्स थे। कई
अलग अलग तरीके थे, जैसे हमारा एक अगर NIOS लर्नर है और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है NIOS के थ्रू, तो वो साथ में अगर अपने माँ बाप की हेल्प करना चाहता है इनकम जनरेशन के लिए, तो वो ट्यूशन पढ़ा सकता है। खासकर जो होम साइंस है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसमें 5 अलग अलग फील्ड्स निकलती हैं, तो वो उन तरीकों से भी उनको यूज कर सकता है, जैसे अपना क्रेच खोल के है, चाइल्ड केयर के लिए है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो उसके थ्रू आप अपना इनकम, अपनी इनकम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ इनकम जनरेशन के लिए योगदान दे सकते हैं।
बिल्कुल, आप इसी बात पर, मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया। कुछ बार कुछ कॉलेजेस के लड़के, उनकी अपनी यूनिफॉर्म थी, व्हाइट शर्ट थी, और कहीं सड़क से गुजर रहे थे।
अच्छा,
दैट वॉज अ बिग बिजी स्ट्रीट। तो आजकल देखा होगा कि दुकानदार बाहर अपने बोर्ड लगा देते हैं। वो बोर्ड काफी गंदे थे, एक लड़की की शर्ट वहां उससे टच होती है और वो गंदी हो जाती है।
अच्छा,
वो दुकानदार से कहता है, भाई ये कैसा बोर्ड रखा है, तुम साफ भी नहीं कर सकते। दुकानदार कहता है, भैया मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना फिजिकली फिट नहीं हूं, और ये ऊपर इतना बोर्ड लगा हुआ है, ये कैसे करूंगा। बोले लाओ हम करते हैं, बताओ क्या दोगे। लड़के थे जोश में आ गए, उसने कहा ठीक है मैं आपको 200 रुपए दूंगा, आप ये बोर्ड मेरा साफ कर दीजिए। वो कॉलेज बॉयज से उन्होंने सबने मिलकर फटाफट चार पांच थे एक सीढ़ी इधर उधर से अरेंज करी, पानी इकट्ठा करा और बोर्ड साफ चमका दिया।
अच्छा।
शॉपकीपर बहुत खुश हुआ। हाँ। उसने इमीडिएटली 200 रुपए दिए और धन्यवाद दिया।
हाँ।
अब उसको देखा देखी जो आसपास की दुकानें थी।
हाँ।
उन्हें भी लगा कि भाई हम दुकान की तो सफाई करते हैं लेकिन जो बोर्ड,
हाँ,
जो हमारा साइन बोर्ड है जिससे पता चलता है कि हमारी दुकान का नाम क्या है,
हाँ,
वही नहीं कोई हम साफ करते, कभी नहीं करते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, ऊपर इतना लगा हुआ है,
ऊपर ऊंचा होता है।
अब वो सब इकट्ठे होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई प्लीज आप हमारा भी ये काम कर दीजिए। उनको तो एक सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम मिल गया,
हो गया
200 रुपीज पर है,
हाँ,
उनको मिल रहा था।
हाँ।
उन्होंने कहा छुट्टियां चली रही हैं, चलिए इस काम को भी करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे ओपेंड अ वेरी बिग बिजनेस ऑफ क्लीनिंग द साइन बोर्ड्स व्हिच इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ बिजनेस जो किसी ने कभी नहीं करा था और मार्केट में वो एग्जिस्टेंस में भी नहीं था
जी।
एंड दे ग्रू इट एज अ बिग कंपनी, लेटर ऑन दे हायर ऑन द वेरियस पर्सन फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब्स, उनका काम बहुत अच्छा चल पड़ा।
Wonderful.
तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं विद सम एक्सीडेंट्स वी कैन से, या जब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रास्ता
निकालना पड़ता है। तो बिल्कुल आज हम आए हैं एक और कठिन, अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, इसमें मैं सरकार के बिल्कुल पलट एक बात करूंगी, जो आज मैंने वॉरेन बफेट की एक कोट पढ़ी है। उनका ये कहना है कि जो लोग खर्चा करने के बाद जो बचता है
जी,
उसकी सेविंग करते हैं वो कभी अमीर नहीं हो सकते, लेकिन जो सेविंग अपनी प्लान बना के सेविंग करने के बाद जो बचता है उसको खर्चते हैं वो जरूर अमीर हो सकते हैं।
और इसीलिए हमने पिछली बार जो है वो अपने लर्नर्स को बताया था कि आप अपना बजट कैसे बनाते हैं
जी, बिल्कुल,
और अपना बजट कैसे बना के उसमें सेविंग्स का भी एक कॉलम आप रखिए ताकि वो आगे के किसी अनचाही अगर कोई ऐसी यू नो चीजें हो जाती हैं उसके लिए रख सकते हैं, या कोई बीमार पड़ जाता है उसके लिए रख सकते हैं।
बिल्कुल।
और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो डेफिनेटली वो आपकी सेविंग्स जो है वो टाइम के साथ समय के साथ बढ़ती जाएंगी जो आगे आने वाले समय में आपके काम आएंगी
और इसीलिए आज हमने श्रोताओं इन्वाइट किया है पीयूष जी को, जो हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे। तो पीयूष जी सबसे पहले हमें बताइए आखिर सेविंग्स को डिफाइन कैसे करेंगे, सेविंग्स होता क्या है?
देखिए भाई सबसे पहले सेविंग्स के लिए जो सबसे जरूरी चीज आती है वो आती है इनकम।
बिल्कुल।
इफ यू आर हैविंग एनी सोर्स ऑफ इनकम देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई आप कुछ सेविंग्स कर पाएंगे
जी।
अगर आपके पास कोई इनकम ही नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है पैसा कमाने का
जी,
तो आप बचत कर ही नहीं सकते।
बिल्कुल।
नॉर्मली एज अ हाउस होल्ड हम लोग क्या करते हैं, जैसा अभी आपको बताया भी गया था कि वी यूज टू मेक अ प्लान वेल इन एडवांस कि भाई हमें कितना खर्चा करना है और हमारी कितनी कितनी इनकम है। अगर एक सर्विस क्लास पर्सन की बात करें जिसकी एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होती है फ्रॉम सैलरी ही इज गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ मनी,
बिल्कुल,
तो वो खर्चे प्री डिसाइडेड कर लेते हैं कि हमें इस मंथ में ये खर्चा करना है
जी।
अब जो कुछ भी सेविंग्स का सिंपल सा एक डेफिनेशन, एक अकाउंटिंग फॉर्मूला अगर हम ले तो वो ये होता है द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, जितनी भी इनकम है फालतू हमारे खर्चों के ऊपर उसे हम सेविंग्स कहते हैं। अब बात ये आती है कि सेविंग्स क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है।
बिल्कुल।
इफ यू आर गोइंग टू कीप द मनी विच इज गोइंग टू लेफ्ट असाइड विद यू, दैट इज सिंपली अ सेविंग अंटिल अनलेस यू चैनलाइज दोज सेविंग्स इन सम एवेन्यूज इन सम वेंचर्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताता हूँ कि देखिए हम लोग महंगाई में हम बड़ी मारा मारी है महंगाई की, सब तरफ शोर है
जी।
हम लोग महंगाई में कैसे योगदान कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा योगदान महंगाई में हो रहा है आप सभी लोगों का जो कि हाउस होल्ड्स की कैटेगरीज में आते हैं। देखिए जब सरकार कोई करेंसी नोट छापती है तो उस पर दो नंबर लिखती है
जी।
एक ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड टॉप और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पर। अब सोचने की बात, आपने कभी ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों कि एक ही तरफ एक ही नोट पर दो नंबर हो? क्या एक नंबर से नोट की रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो सकती?
बिल्कुल हो सकती है।
उसके बैक में भी दो होते हैं। उसी तरह से
कुल मिला के चार।
इस तरह से होता है जैसे कि एक व्हीकल, एक गाड़ी या स्कूटर या कार या मोटरसाइकिल जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ नंबर होते हैं और ये सेम होता है। तो जब कोई सरकार करेंसी इशू करती है तो उनके पास ये तो रिकॉर्ड होता है कि उन्होंने किस नंबर का कौन सा करेंसी नोट इशू करा,
ठीक है,
लेकिन वो किसके पास है और कहाँ है इसका कोई तरीका नहीं है उनके पास जानने का।
ठीक,
अब एज अ हाउस होल्ड आप क्या करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से जो हम सेविंग्स की बात करते हैं आप कुछ पैसा बचा कर रखते हैं
जी।
किसी ने 1,000, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 वो पैसा लिया, बचा लिया और सेफ में घर में या कहीं सेफ एंड सिक्योर प्लेस पर रख दिया।
हाँ बिल्कुल,
हुआ ये कि उतना पैसा मार्केट से गायब हो गया
जी।
थोड़ा सा टेक्निकल आप उसको समझिए कि अगर आपने 10,000 रुपए बचाए और अपने घर में एक अलमारी में बंद करके रख दिए तो मार्केट से वो 10,000 रुपए की करेंसी गायब हो गई। सरकार के पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि वो पैसा कहाँ है और किसके पास है। अब उस करेंसी की मार्केट में शॉर्टेज अराइज हुई, यानी कि अगर वो 1,000 का नोट है तो आपको 1,000 के नोट आसानी से नहीं मिलेंगे, आप मांगेंगे तो भी नहीं, है ही नहीं, क्योंकि हम सबने 1,000 रुपए के 10-10 नोट उठाकर अपने घर में करेंसी रख ली, सेफ में रख ली। अब सरकार उस करेंसी की शॉर्टेज को मीट आउट करने के लिए नई करेंसी छापेगी और आप ये सभी जानते हैं जब नई करेंसी आती है तो इन्फ्लेशन होता है और महंगाई
बढ़ती है।
तो ये हम लोग जाने अनजाने एक एंटी सोशल एक्टिविटी करने जाते हैं, ये करते हैं कि भाई बचत हो जाती है। इसी का दूसरा प्रारूप अगर आप लें, आप उस पैसे को अपने घर में ना रखकर, ये तो रही बात सेविंग्स की, अगर उसको कहीं चैनलाइज कर दें, इन्वेस्ट कर दें, कहीं लगा दें, चाहे आप उससे जमीन खरीदें, चाहे आप उससे शेयर्स खरीदें, आप उससे गोल्ड खरीदें, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करें, बैंक में डिपॉजिट करें, चैनलाइज कर दें उसको, प्रोसेस में ले आए, मोबिलिटी उसकी करा दें, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा।
एक चीज बताइए पीयूष जी, ये तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घरों में हमें एक इमरजेंसी होती
जी।
है तो हम एक इमरजेंसी फंड रखते हैं, हम चाहते हैं कि रात पे रात हमारे को अगर जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास तुरंत पैसा होना चाहिए, तो ऐसे में फिर हम क्या करें?
बिल्कुल, पैसा रखना तो चाहिए लेकिन विद इन लिमिट्स, कम से कम। इसीलिए आजकल बैंक्स अगर आप देखते होंगे वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के यूज पर कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं।
हाँ बिल्कुल,
ताकि मार्केट में पैसा चलन में रहे।
हाँ।
और उसकी शॉर्टेज अराइज ना हो, काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचें, फेक करेंसी की प्रॉब्लम से बचें, इसलिए वो चाहते हैं कि आप एक्चुअल कैश में ट्रांजेक्ट ना करें, आप जो भी पेमेंट करें गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो, उसका प्रूफ हो। आप देखेंगे गवर्नमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज को क्यों इतना बढ़ावा दे रही है, आप आज एक मिठाई की दुकान पर जाएं और मिठाई खरीदें आपको वो बिल नहीं देगा, बट अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज की शॉप से कोई बर्गर या पिज्जा या खरीदते हैं तो बाकायदा बिलिंग होगी, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज को प्रेफरेंस देगी बजाय यहाँ की अपनी लोकल कंपनीज को। ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को गवर्नमेंट इसलिए इन्वाइट कर रही है, एटलीस्ट वो रिकॉर्ड तो रख रहे हैं, वो ये तो मेंटेन कर रहे हैं कि हमने कितनी सेल्स करी, हर बार आपसे टैक्स लेगा और हर बार जमा करेंगे।
बिल्कुल,
जबकि आप एक स्टेशनरी शॉप जी।
हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो लोकल बिजनेस हैं वो भी अगर इसी तरह से इसी टेक्निक को अपनाएं और ऐसे करें तो उससे देश को भी फायदा होगा और हम सबको फायदा होगा।
बिल्कुल, फिर शायद हमें मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाने की ही जरूरत ना पड़े और सरकार उनको अपोज करे। अब लोग ये तो कहते हैं सब तरफ होता है कि देखिए विदेशीकरण हो रहा है और इतनी फॉरेन कंपनीज, वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है। भाई वो प्रॉपर टैक्सेस का पेमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो देश में हो रहा है।
बिल्कुल।
तो जो बात आपने पूछी थी कि हमें जो एक कैश मेंटेन करना है अड़ी भीड़ के लिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम सभी को रखना चाहिए, बट एक लिमिट में। वो एक इस तरीके से होता है जैसे व्हीकल्स में एक रिजर्व होता है कि भाई पेट्रोल या डीजल आपका खत्म हो जाए तो यू शुड हैव एन इंडिकेटर रेड साइन, यानी कि ऐसा नहीं कि रिजर्व की एक अलग टंकी होती। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये नहीं होता कि आप एक कैन भरकर अलग रखते हैं, वो विद इन दैट सेम टैंक रिजर्व भी होगा और यूज करने वाला भी होगा। तो आपके पास कोई एक ऐसा इंडिकेटर या साइन होना चाहिए जो करंट फ्लो में ही आपको इंडिकेट करे कि नाउ दिस इज अवर रिजर्व एंड दिस शुड बी द पार्ट ऑफ आवर एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं कि आप उस पैसे को उठाकर अलग रख दें। शायद ये जो व्हीकल वाला मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ पाए।
हाँ।
कि उसके लिए अलग से कहीं कोई हम पेट्रोल या डीजल किसी केन में भरकर नहीं रखते,
नहीं रखते।
सेम टैंक में हमें इंडिकेशन हो जाता है कि नाउ इट्स गोइंग टू बी एन ओवर, तो वी शुड गेट इट रीफिल्ड।
तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली एज अ कंज्यूमर और एज अ ह्यूमन बीइंग, ये मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मैं अपने आप को नियंत्रण में रखूं, मैं अपने खर्चों को नियंत्रण में रखूं। ये नहीं कि मेरे जेब में जब तक लास्ट पैसा ना खर्च हो जाए तब तक मैं, मेरे को कोई वार्निंग बेल ना आए, और मैं ये तो खुद को नियंत्रण करने वाली बात है। तो
बिल्कुल
ये बहुत अच्छा पॉइंट है पीयूष जी, और आई एम श्योर कि हमारे जितने सुनने वाले हैं, जितने श्रोता हैं, जितने लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात के ऊपर ध्यान देंगे। तो पीयूष जी, आपको वापस लाती हूँ मैं अपने इस लेसन नंबर 13 में, जिसमें हमने कॉमन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बता रखे हैं, और इसमें हमने कुछ बातें करी हैं। एक हमने कहा है कि बैंक में आप रख सकते हैं पैसे, पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, प्रोविडेंट फंड बना सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, प्राइवेट कंपनी है, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी है। ये आखिर मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है हमारे सभी लर्नर्स के लिए कि हर एक में कौन सा पैसा या कितना पैसा हम कहाँ रखें, क्यों रखें, कैसे रखें, और मेरी जरूरत के समय मुझे ये कैसे उपलब्ध हो,
और उसमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ। अलग अलग तरीके के लोगों के लिए, जो अलग अलग, चाहे वो बिजनेस कैटेगरी से हों, चाहे वो सर्विस वाले हों, उनके लिए क्या सूटेबल रहेंगे जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं।
तो क्या बैंक से शुरू करें?
बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि सबसे ज्यादा शायद बैंक ही हर एक को दिखाई देते हैं
जी, क्योंकि हमारे लर्नर्स भी मोस्टली अभी इस लेवल पे है कि वो उनके पास सेविंग्स कुछ कम होंगी, शायद वो बाकी जगह भी इन्वेस्टमेंट ना कर पाएं।
जी बिल्कुल।
तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की हमने बात करी, ऑप्शंस की बात करी है, उनके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, एक एक को इंडिविजुअल आपने समझना है, एंड देन लेटर ऑन यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन दैट विच वन इज गोइंग टू सूट यू। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक्स की।
ठीक।
बैंक्स हमारी कंट्री में आजकल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नेशनलाइज, प्राइवेट और शेड्यूल्ड, कोऑपरेटिव, बहुत सारी तरीके के बैंक होते हैं, एंड ऑल दीज बैंक्स आर गोइंग टू कम अंडर अ पर्व्यू ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस विच आर गोइंग टू बी फ्रेम्ड एंड डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम।
ठीक है, इसका मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि बैंक चाहे कैसा भी हो, उसको सरकार की एक ही पॉलिसी को फॉलो करना है, इसलिए इसका मतलब बैंक काफी सेफ ऑप्शन है।
जी
ओके।
यहां मैं बच्चों को एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और इन केस कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाए,
अच्छा
मान लीजिए बैंक ये कहता है जी हम तो बैंकरप्ट हो गए।
मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे बच्चों को थोड़ा अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि सेविंग अकाउंट या उसमें क्या थोड़ा सा
डिफरेंस। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उस पर आऊंगा। हम सब बैंक में सेविंग्स की बात कर रहे थे कि अगर हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी है सिर्फ 5,000 रुपीज पर अकाउंट, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं और बैंक दिवालिया हो जाए, ये कहता है जी हम पैसे देने की हालत में नहीं है, तो सरकार आपको 5,000 रुपए प्रति अकाउंट जरूर देगी। सिर्फ गवर्नमेंट की ये गारंटी है, दैट इज अ मैक्सिमम गारंटी।
तो मुझे तो बैंक से डर लग गया।
नहीं, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट टू हैव अ कॉशन विद यू, यू शुड नो दिस थिंग। ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरेस्ट रेयर केस में होगा कि बैंक कभी खुद बैंकरप्ट हो, बिकॉज बैंक ऑलवेज यूज टू टेक द मनी फ्रॉम द पब्लिक एज अ डिपॉजिट एंड लैंड इट, उसी पैसे को वो लोन पर देते हैं दूसरे लोगों को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर।
ठीक है।
और काफी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को फॉलो करते हैं।
पीयूष जी, यहाँ पर मेरा भी एक प्रश्न है आपसे, तो क्या ऐसी कंडीशन में जैसा कि बताया कि बैंकरप्ट हो जाता है बैंक भी कभी, क्या गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं हमें इनका सहारा ज्यादा लेना चाहिए?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
बैंक्रप्ट कोई भी बैंक हो सकता है?
कोई भी बैंक हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स का जो शेड्यूल्ड बैंक है, जो नेशनलाइज बैंक है
जी,
उस केसेस में होता क्या है कि अगर वो बैंक लगातार लॉसेज में चल रहा होता है तो गवर्नमेंट उसको किसी दूसरे बैंक में मर्ज कर देती है।
जी,
जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो लॉसेज में चल रही थी, उनको सबको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। काफी बैंक थे जिनको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया, लेकिन पब्लिक को प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फंड्स की प्रोवाइड करी गई।
जी जी जी।
ऐसा नॉर्मली उन केसेस में होता है जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में खुले हुए होते हैं, वो अक्सर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स होते हैं
जी।
तो
एक और प्रश्न है पीयूष जी कि जैसे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे आजकल हम, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत सारे बैंक्स हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं और गवर्नमेंट बैंक की जगह उन्होंने लगभग घेर ली है
जी।
अक्सर तक लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या मान लीजिए कोई स्कीम लेने की बात करते हैं तो हमें एक आम धारणा होती है कि नहीं नहीं, इसमें पैसा फंसाना ठीक नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई ऐसा होता है कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करना या कोई पॉलिसी लेना इनके थ्रू, ये थोड़ा सा इसमें खतरा होता है?
नहीं, सिर्फ अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने तक की बात कर रहे हैं जो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत छोटा सा प्रारूप है, उसको आप रिस्क में ना कंसीडर करें। दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट थिंग बिकॉज द बैंक प्रोवाइड यू द सेफ्टी।
मैं इसके अलावा की बात कर रही हूं
जी। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सभी लोगों को आजकल गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि जो पैसा आपसे लिया जाएगा वो उसको कहाँ लगाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितनी रिटर्न आपको एंश्योर करते हैं। तो वो तो आपको डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट, ऐसा अगर होगा तो फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कभी भी फंड्स रेज नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा गवर्नमेंट के सहारे नहीं चल सकते। तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज तो आपने डिसाइड करने हैं, पैसा सेफ होता है, सिर्फ ये आपने देखना है कि आप उसको सही तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करेंगे।
तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई है पीयूष जी आपने, और मैं सभी श्रोताओं से, सुनने वालों से सभी ये कहना चाहूंगी कि अल्टीमेटली ये हमारी डिसीजन है कि हम मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं
जी।
और जब भी हम इन्वेस्ट करें हमें ये अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए कि उस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या है, उसके छुपे हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेने चाहिए, उसकी सेफ्टी के बारे में सारा कुछ पहले से जान लेना चाहिए, और किसी जानकार से अच्छी तरह से डिस्कस करके ही उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
इतना इम्पोर्टेंट इश्यू चल रहा है आशिमा जी, मैं एक बार अपने लर्नर्स को जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि हमारी फोन लाइन्स खुली हैं। हमारी फोन लाइन्स खुली रहने का वक्त होता है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। यदि आपका संबंधित कोई भी प्रश्न है जिसका समाधान आप हमारे एक्सपर्ट से चाहते हैं तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इनकम मैनेजमेंट, होम साइंस है हमारा विषय, और हमारे फोन नंबर्स हैं 0120-4626-949 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1800-1802543। जी पीयूष जी, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे।
तो हमने सबसे पहले बच्चों लिया बैंक्स। आप देखेंगे कि आपके आसपास बैंक्स हैं, एक सबसे सेफ मोड होता है आपके इन्वेस्टमेंट का, स्टार्टअप करने का किसी चीज को, कि आप बैंक में पैसे जमा करें, जो भी आपके पास सेविंग्स हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी है ओवर योर एक्सपेंडिचर्स। यहाँ अब क्यों जमा किया जाता है? जो आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, सबसे पहली बात तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है, दूसरी चीज आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, आप जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से उसको निकाल सकते हैं, तीसरा आप नेशन बिल्डिंग में मदद कर रहे हैं। बैंक उस पैसे को लोन देगा इंडस्ट्रीज को या जिनको उसकी जरूरत है, और वो फंड्स मोबिलिटी में रहेंगे, प्रोसेस में रहेंगे, ताकि दूसरे लोगों के काम आ सकें।
वाह, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है कि जब मैं बैंक में पैसे रखूंगी तो मैं नेशन बिल्डिंग का काम भी करूंगी।
जी।
अब पूजा ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम अकाउंट कैसे खोल सकते हैं।
हाँ
देखिए, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट, जो अकाउंट्स होते हैं नॉर्मली बच्चों आपको पता होना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है और एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। नॉर्मली ये 4 तरीके के अकाउंट होते हैं। हम आपके लिए बात कर रहे हैं फिलहाल सेविंग अकाउंट की। कि एज अ सर्विस क्लास पर्सन और एज अ हाउस होल्ड यू आर हैविंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग्स विद यू और आप बैंक में जाते हैं तो देर इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्म विच यू हैव टू बी टेक फ्रॉम द बैंक एंड दैट इज अवेलेबल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यू हैव टू फिल इट यू हैव टू डिपॉजिट विद द बैंक नॉर्मली नाउअडेज बैंक वॉन्ट द एड्रेस प्रूफ द कॉपी ऑफ अ पैन कार्ड एंड देर इज अ स्पेशल कंडीशन नाउअडेज नोन एज अ KYC नॉर्म्स विच इज नोन एज अ नो योर कस्टमर्स यानी कि हम बैंक से उम्मीद करते हैं कि आप उनके कस्टमर बनने जा रहे हैं तो बैंक को पूरा अधिकार है आपके बारे में सारी जानकारियां हासिल करने का कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है आपकी एज क्या है आप कहाँ रहते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो सब आपको प्रूफ बैंक को देने पड़ेंगे ताकि बैंक आपका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। अब आपको एक
ये वैसे बहुत अच्छी चीज है KYC पीयूष जी क्योंकि मैं इस तरह से सोच रही हूँ कि इस तरह से जो कई लोग बैंक में फ्रॉड्स करते हैं वो उस पर भी काफी काबू आ जाएगा जिससे कि बैंकों की सेफ्टी बढ़ती है और मेरा निवेश किया हुआ बैंक में जो रखा हुआ पैसा है उसकी भी सेफ्टी बढ़ती है। तो कई बार हम नाराज हो जाते हैं कि इतना कुछ पूछ रहे हैं आखिर हमने 2000 रुपए तो जमा किए हैं लेकिन अल्टीमेटली मेरे वो 2000 रुपए जो हैं वो बहुत ही मेहनत से कमाए गए हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो खो जाएं।
मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो KYC एक और एक मॉनिटरिंग का तरीका भी हो गया कि जो भी लोग अपने अकाउंट खोल रहे हैं जो या जो भी उनकी सोर्स ऑफ इनकम है हम उन पर एक चेक रख रहे हैं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है या कितनी इनकम है कि अगर वो टैक्स पे करने वालों के लिस्ट में आ रहे हैं तो क्या वो उतना टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक्चुअली ओवरऑल जो अभी पीयूष जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग से भी जाकर जुड़ती हैं चीजें जब आप ये सारे सिस्टम्स को प्रॉपर ढंग से काम करने में काम उनका चलता रहे ये इंश्योर कर देते हैं इन सब चीजों के माध्यम से।
जी तो बस आप एक बार वो फॉर्म भरें और अपने 2 फोटोग्राफ रीसेंट फोटोग्राफ बैंक में दें और एक स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड होगा जहां बैंक आपसे सिग्नेचर्स ले लेगा और आपको एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा जो नॉर्मली किसी अकाउंट होल्डर का होगा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का होगा वो एक बैंक एम्प्लॉय भी हो सकता है या कोई दूसरा अकाउंट होल्डर भी हो सकता है। बैंक ये सारी चीजें सर्टिफाई और वेरीफाई करके विद इन अ डे मानकर चलिए उसी दिन विद इन एन आवर आपका अकाउंट खुल जाएगा और इमीडिएटली आपको एक पासबुक इश्यू हो जाएगी एक ऐसी बुकलेट जो आपके बैंक ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट करेगी। जब जब बैंक में कोई ट्रांजेक्शन होगा आप डिपॉजिट करेंगे पैसा निकालेंगे बैंक आपको इंटरेस्ट देगा कुछ चार्जेस आपसे लेगा वो सारी एंट्रीज आपके पासबुक में होंगी। कई बैंक आजकल पासबुक नहीं इशू करते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट देते हैं और साथ ही साथ अगर आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए कुछ चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे विच इज अ रिक्वेस्ट टू अ बैंक फॉर इशूइंग यू अ चेक बुक एक बुकलेट आपको इश्यू होगी जो जिसमें चेक्स होंगे ताकि आप जब चाहे पैसे निकाल सकें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिले तो आपको डेबिट कार्ड भी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक से मिल जाता है। एक सबसे बड़ा फायदा आजकल बैंक अकाउंट का क्या होता है बच्चों जैसे ही आप बैंक अकाउंट खोलते हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका 1 लाख रुपीज का इंश्योरेंस हो जाता है कंपल्सरी दैट इज फॉर 1 ईयर कि विद इन दैट 1 ईयर इफ एनी मिसअप टुक प्लेस द बैंक इज गोइंग टू गिव 1 लाख रुपीज टू योर लीगल हायर्स और हूएवर इज गोइंग टू बी द नॉमिनी। आपको शायद ये पता हो या ना हो मैं जरूरी समझता हूँ आपको बताना जैसा कि बच्चों मोबाइल पोर्टेबिलिटी आपने सुना होगा दैट यू कैन कीप द सेम मोबाइल नंबर बट यू कैन चेंज द कंपनी आजकल वो बैंक अकाउंट में भी पॉसिबल है। अगर आपका ऑलरेडी किसी बैंक में खाता है और आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो यू कैन कीप द सेम अकाउंट नंबर विद यू एंड कैन चेंज योर बैंक दिस इज वेरी मच पॉसिबल नाउअडेज बट क्योंकि पब्लिक इसके बारे में अवेयर नहीं है वो नहीं जानती है तो वो मजबूर हो जाते हैं उसी बैंक में ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो इस
और
तरीके से
क्या पीयूष ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर सपोज एक बैंक है ए और एक दूसरा बैंक है बी और एक ही अपनी खुद अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो अगर मैं उस पर्टिकुलर ब्रांच की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं एक ही किसी और ब्रांच A2 या A3 में भी अपना अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं?
बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए सर्विस क्लास पर्सन के साथ तो अक्सर ये होता है कि उनका ट्रांसफर होता रहता है, तो वो चाहते हैं कि एक नेशनलाइज बैंक में उनका अकाउंट हो
जी,
तो बड़े आराम से उनका अकाउंट वहां से वहां ट्रांसफर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये तो बड़ा सिंपल है। मैं तो यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपका अकाउंट नंबर भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा,
सेम अकाउंट नंबर के साथ ही हम दूसरे बैंक में जैसे ए से बी में जा सकते हैं।
बिल्कुल जा सकते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी चीज है कि जब कभी भी आप अकाउंट खोलें तो अपना कोई ना कोई नॉमिनी जरूर बनाएं।
हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि पीयूष जी, ये नॉमिनी क्या होता है और ये क्यों बनाया जाना चाहिए?
नॉमिनी वो लीगल हायर होता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हम डिसाइड करते हैं कि इन केस अगर हमारे साथ कुछ मिसअप हो जाए तो वो हमारे सारे फंड्स का हकदार बने। नॉर्मली होता क्या है, हम किसी को नहीं बनाते। वैसे अगर आप एक मैरिड हैं पर्सन तो मे बी इफ यू आर अ वाइफ देन योर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड आर गोइंग टू बी योर नॉमिनी, इफ यू आर अ मेल देन डेफिनेटली योर वाइफ एंड चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी नॉमिनी, इफ यू आर अनमैरिड मे बी योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बिकम नॉमिनी। तो नॉमिनी हम किसी न किसी को जरूर बनाते हैं। इन केस अगर आप नहीं बना पाए देन बैंक्स इज गोइंग टू डिसाइड और दे सेंड द मैटर टू अ कोर्ट, और फाइनली 3 साल बाद अगर कोई भी उसको क्लेम करने नहीं आता आपका पैसा तो वो रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जाता है। अब जो आपकी सेविंग्स है, आपका पैसा है, भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो कम से कम वो पैसा आपके
परिवार को,
रिप्रेजेंटेटिव्स के काम आए, उनको वो पैसा मिले।
बिल्कुल,
इसलिए जरूरी होता है कि आप किसी न किसी को अपना नॉमिनी जरूर अपॉइंट करें, बनाएं।
अच्छा, एक चीज भी उसी मुझे बताएं, बहुत सारे हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो शायद छोटी बहुत छोटी छोटी जगहों में रहते होंगे, गांव में भी रह सकते हैं जहां पे शायद बैंक की ब्रांच ना हो, ऐसे में उन शिक्षार्थियों को किस तरह से बचत करनी होगी?
बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए अगर आपके पास बैंक की कोई ब्रांच नहीं है, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बैंक्स नहीं है, बैंक्स बड़े लिमिटेड हैं, दे आर बेसिकली द कॉमर्शियल बैंक्स, जहां उनको सोर्सेज ऑफ इनकम के तरीके होंगे वो वही अपनी ब्रांच खोलेंगे, ऐसे केस में हम पोस्ट ऑफिस का सहारा लेंगे। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी चीज गवर्नमेंट ने बनाई है जो हर शहर हर गांव देश के कोने कोने में होगा, आप किसी भी पते पर लेटर डालिए, चिट्ठी डालिए, वो जरूर पहुंचेगी।
हाँ, वही तो मैं कह रही थी पीयूष जी कि पोस्ट ऑफिस तो चिट्ठी डालने के लिए होता है, आप कह रहे हैं मैं वहां बचत कर सकती हूँ, तो ये मुझे समझ नहीं आई जरा आपकी बात।
पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ आप अभी तक शायद यही समझते थे कि ये सिर्फ चिट्ठी डालने के लिए ही यूज होता है, लेकिन एक दूसरा फंक्शन फाइनेंशियल फंक्शंस भी होता है जिसमें पोस्ट ऑफिस आपके पैसे भी डिपॉजिट करेगा जस्ट लाइक अ बैंक, और उस पर आपको ब्याज भी देगा कहीं बैंक से ज्यादा। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको चेकबुक इशू नहीं करते जो कि बैंक्स में इशू होती है। आप सब कुछ कर सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं, टाइम से निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको पर्सनली जाना पड़ेगा, पासबुक आपको पोस्ट ऑफिस भी देगा, साथ ही साथ वो बैंक की तरह आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में भी रखेगा। और आज की डेट में तो पोस्ट ऑफिस कहीं इससे ज्यादा फंक्शंस कर रहे हैं, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस गोल्ड कॉइन्स बेच रहे हैं जैसा कि बैंक बेचते हैं, सेल करते हैं, पोस्ट ऑफिस फर्टिलाइजर्स बेच रहे हैं, पोस्ट ऑफिस कपड़ा बेच रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें वो ले आए हैं, और ATM मशीन्स भी आजकल लग गई हैं।
अच्छा,
एज अ ट्रायल बेसिस गवर्नमेंट ने शुरू करी है कुछ पोस्ट ऑफिस में जो बड़े शहरों में हैं, तो पोस्ट ऑफिस आर जस्ट वर्किंग लाइक द बैंक्स। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां की बैंक नहीं है और आपको बचत करनी है तो आपके लिए साधन है, ऐसी बात नहीं है, आप पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां अपना अकाउंट खोलिए, बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस भी आपको एक पासबुक देगा, और सबसे खास बात है कि आप बहुत कम पैसे से पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोल सकते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर बैंक में हमें पता है कि जो दूसरे बैंक हैं
वहाँ तो लगभग शायद 5,000 रुपए में अकाउंट खुलता है और नेशनलाइज बैंक में शायद 1,000 में खुलता है। लेकिन 1,000 होगा तो आप खोलेंगे ना,
बिल्कुल।
लेकिन पोस्ट ऑफिस हमारे कई शिक्षार्थियों के पास हो सकता है पॉकेट मनी लेते हो और उनके पास इतना जरिया ना हो कि वो 1,000 इकट्ठा करके बैंक अकाउंट खोल सके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पोस्ट ऑफिस में कम पैसों
में तो 50-100 रुपए से जस्ट आपके पास एक इनिशियल अमाउंट होना चाहिए और अकाउंट अपना खोल सकते हैं।
वाह,
और सेविंग्स का एक सबसे बढ़िया साधन है। और मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस नॉर्मली गिव द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द बैंक्स।
ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो फिर श्रोताओं, ये हो जाए एक एक्टिविटी, बिल्कुल आप लोगों को कर लेनी चाहिए। ये एक्टिविटी 13.4 है आपकी किताब में, जिसमें लिखा है कि विजिट अ बैंक एंड अ पोस्ट ऑफिस एंड देन फाइंड आउट द वेरियस सेविंग स्कीम्स ऑफर्ड बाय देम एंड इनकम टैक्स रिबेट ऑन द स्कीम्स। और अब पीयूष जी ने एक और चीज ऐड कर दी है कि फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट यू विल इन्वेस्ट। और ये एक अच्छा एक्टिविटी है जो आपको ये डिसीशन करने में मदद करेगी कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें और क्यों इन्वेस्ट करें।
बच्चों, और एक इसमें डिफरेंस आता है, बैंक में अगर आपको 10,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इज टोटली फ्री फ्रॉम द इनकम टैक्स। यानी कि अगर हम आपके पेरेंट्स की बात करें, अगर वो उनको बैंक में डिपॉजिट से और 10,000 रुपए तक का उन्हें ब्याज मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दैट इनकम इज टैक्सेबल फ्री इनकम, टैक्स फ्री इनकम। और अगर वो ब्याज की रकम 10,000 से ज्यादा हो जाती है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जबकि हम पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स करते ही इसलिए थे कि हमें टैक्स बिल्कुल ना देना पड़े। जैसे कि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं जो कि 5 साल से ज्यादा के लिए 5.5 साल के होते हैं और जितने रुपीस के आप खरीदेंगे 1 लाख रुपीस तक आपको टैक्सेबल इनकम में उसमें रिबेट मिलती है और आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
तो ये जो NSCs हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं?
जी, ये पोस्ट ऑफिस में ही मिलते हैं।
ये इसके लिए मेरे पास मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए पीयूष?
जैसे ये 100 रुपीज के डिनोमिनेशंस में आते हैं।
अच्छा, तो मेरे पास 100 रुपए भी होंगे तो मैं खरीद सकता?
बिल्कुल।
अच्छा,
तो आप जितने लेना चाहें इन द मल्टीपल्स ऑफ दैट उतने खरीद सकते हैं। तो नॉर्मली जो भी आपकी सेविंग्स होंगी, अगर आप उसको टैक्स में रिबेट चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदिए। बैंक में भी अगर आप 5 साल से ज्यादा की कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उसमें भी इनकम टैक्स की पूरी रिबेट मिलती है। रीजन क्या होता है, आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट क्यों हमें रिबेट दे रही है पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने पर या बैंक में 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराने पर?
मुझे तो लगता है पीयूष जी कि सरकार चाहती ही नहीं कि मैं पैसे खर्चूं, इसलिए वो मेरे वहां जमा करवा देती, फंसा देती है पैसे और ताकि मैं उसको निकाल ही ना पाऊं। ऐसा है क्या?
नहीं नहीं, ऐसा अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपकी अपने डिसीजन है कि आप उसको खर्च करें या सेव करें। सरकार का पर्पस होता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए उन्हें। वो आएगा कहां से? अब हर बार तो नया करेंसी नोट छापकर वो उसको नहीं पूरा कर सकते, वो आप ही लोगों से लेना है। तो अब आपसे कैसे लें? आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भई आप 5 साल के लिए करिए जमा, 5 साल तक आप पैसा नहीं मांगेंगे और गवर्नमेंट उसको एज अ लोन किसी को दे सकती है, इंडस्ट्रीज को, जिससे प्रोडक्शन होगा, प्रोसेस में पैसा आएगा, साइकिलिंग में पैसा आएगा और आपके एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे, खर्चा करने की ताकत कम हो जाएगी जिससे कि महंगाई कम होगी। दो तरीके से इफेक्ट हुआ, एक तो महंगाई कम हो गई, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ गया जिससे मार्केट में सामान ज्यादा आ गया, लोगों की जरूरतें पूरी हो गई और वो सामान सस्ता मिल गया। तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर टैक्सेस की रिबेट देती है।
इससे मुझे पीयूष जी, पूजा, मुझे ये समझ आ रही है कि बहुत सी चीजें छुपी हुई होती
हैं,
जो हमें ऐसे
मालूम नहीं चलती, लेकिन आज रियली हमें धन्यवाद करना चाहिए पीयूष जी का, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे सभी श्रोताओं को और हमें भी
बिल्कुल
उसको समझाया। तो पीयूष जी, एक चीज, एक टर्म हम बार बार सुनते हैं, प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में आप बताएंगे ये क्या चीज है?
देखिए बच्चों, वैसे तो प्रोविडेंट फंड रिटायर्ड वाले लोगों की बात आ जाती है,
हाँ।
लेकिन क्योंकि आप भी सर्विस करेंगे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस क्लास पर्संस की सेफ्टी चाहती है कि भाई व्हाट्स गोइंग टू बी डन आफ्टर रिटायरमेंट। आप देखा होगा बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पेंशन मिले, जो कि प्राइवेट जॉब्स में नहीं होती है। आप जब तक आप काम कर रहे हैं, आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जहां आप फिजिकली इनकैपेबल हो गए, ओल्ड हो गए या अनफिट हो गए, आपकी इनकम खत्म। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपको आपके रिटायरमेंट के बाद भी एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, ताकि आप अपने खर्चे उठा सकें, अपनी फैमिली का खर्चा उठा सकें। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी सैलरी में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज नॉर्मली गोइंग टू बी 10% एक एवरेज ले लेते हैं, डिडक्ट करती है, और वो अमाउंट कहलाता है आपका प्रोविडेंट फंड। ये फंड बैंक में गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाता है, जो मिलता है आपको एट द टाइम व्हेन यू लीव द जॉब और व्हेन यू रिटायर टुगेदर विद द इंटरेस्ट। यहां दो तरह के फंड्स की बात आती है, एक होता है GPF और एक है आपका PPF।
GPF का मतलब होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी कल ही हमारे यहाँ सभी रिश्तेदार आए हुए थे, तो मेरे दो रिश्तेदार, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और एक प्राइवेट बिजनेस है, वो कह रहे थे GPF, वो कह रहे थे PPF, और मैं समझ ही नहीं आ पा रही थी कि ये GPF PPF की लड़ाई क्या है और इसमें क्या चीज है, इसको रियली मुझे बताएं कि आखिर इसमें क्या।
देखिए GPF बेसिकली उन लोगों के लिए था जिन्होंने 2004 या उससे पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी। 2004 के बाद GPF बंद हो गया, इसका मतलब होता था जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी कि आपकी तनख्वाह में से करीब करीब 10% पैसा सरकार डिडक्ट करेगी,
अच्छा,
अपने पास डिपॉजिट करेगी, रिटायर होने पर आपको आपका सारा पैसा वापस मिलेगा ब्याज के साथ,
अच्छा,
और साथ ही साथ आपको एक पेंशन भी मिलेगी। लेकिन जिन लोगों ने 2004 के बाद कोई गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करी, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाई एज अ न्यू पेंशन स्कीम,
ठीक है।
वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है कि जितना पैसा आपकी तनख्वाह में से डिडक्ट हुआ, उतना ही कंट्रीब्यूशन वो भी देंगे, यानी कि मानिए अगर आप अपनी तनख्वाह में से 1,000 रूपये डिडक्ट होते हैं, तो 1,000 आपको गवर्नमेंट देगी और 2,000 रूपये आपके न्यू पेंशन स्कीम में डिपॉजिट हो जाएंगे। साथ में उसमें आपको ब्याज भी मिलेगा, रिटायरमेंट पे आपको आपका सारा पैसा वापस मिलेगा, लेकिन कोई पेंशन नहीं होगी। तो GPF और न्यू पेंशन स्कीम, तो पहले तो ये आपको समझनी है। अब जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं या प्राइवेट सर्विस करते हैं, उनको कहां से मदद मिलेगी? तो उनके लिए है PPF, दैट इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकते हैं। ये 15 साल के लिए होता है। आप कोई भी अमाउंट, जो कि नॉर्मली मिनिमम 1,000 इन अ ईयर आपको डिपॉजिट करना जरूरी है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप खोल सकते हैं। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। 3 साल बाद जरूरत पड़ने पर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं और 15 साल बाद आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा।
अच्छा, तो लेकिन मुझे ये बताएं कि PPF जमा कहाँ करना होता है?
मैंने अभी बताया, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक,
अच्छा।
अब इन सभी बैंकों में, इवन इन द पोस्ट ऑफिसेस, आप PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकते हैं और वो पैसा वहां जमा करा सकते हैं।
ठीक है
जी,
ठीक है।
एक सवाल मैं यहाँ पीयूष जी से पूछना चाहूंगी, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, कि ये जो हमारा PPF GPF दोनों अभी हमने डिस्कस करे, तो आपने कहा कि 2004 के बाद जो पेंशन स्कीम है वो खत्म हो गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी, उसके बाद जो हमें, जैसे उन्होंने, हमने 1,000 डाले, गवर्नमेंट ने भी 1,000 डाले, फिर उसमें इंटरेस्ट होके वो हमें मिल जाएगा
जी।
तो क्या ये एक वन टाइम अमाउंट होता है जो हमें जब हम रिटायर होंगे तब मिलेगा, और पीपीएफ में इसका क्या होता है, ये भी वन टाइम अमाउंट है या ये भी हमें किश्तों में मिलता रहता है पेंशन की तरह?
देखिए जीपीएफ में आपका जो पैसा कटा सरकार के पास जमा हो गया उसमें सरकार अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती, सिर्फ आप ही का डिडक्शन वहां पर जमा है और उस पर ब्याज है।
ठीक है,
जरूरत पड़ने पर आप उस पैसे को निकाल सकते हैं
बीच में भी
अगर आपकी 10 साल से कम की सर्विस हुई है
जी,
तो आपको वो रिफंडेबल पैसा लेना होगा, यानी कि जितना आपने बैंक लिया वो आपको वापस जमा कराना पड़ेगा सरकार के पास। लेकिन अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज्यादा की हो गई है तो आप उसको परमानेंटली विड्रॉ कर सकते हैं और आपको वापस जमा नहीं कराना पड़ेगा। तो जैसे बच्चों की शादी है, हमें मकान बनवाना है या घर में कोई फैमिली फंक्शन है, उस केस में जरूरत पड़ने पर वो हमारा पैसा है, हम उसे कभी भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज रिटायरमेंट के समय पर या एट द टाइम व्हेन यू लीव अ जॉब आपको आपका सारा पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा,
वन टाइम अमाउंट
जी।
वैसे ये एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इस तरह से सरकार ने ये कोशिश की है कि कैसे भी हम लोग सब सेविंग करें, क्योंकि आपने अगर वो पढ़ा होगा व्हाई शुड वी सेव, रीजंस टू सेव, उसमें ये है कि ओल्ड एज के लिए सेव करना है, एक्सीडेंट्स के लिए सेव करना है, इमरजेंसीज के लिए सेव करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए करना है।
चीजें अगर आते भी हैं, कोई दुर्घटना है या कोई बीमारी है, वो बोलकर या वार्निंग के साथ नहीं आती है, तो हमें उसके लिए पहले से ही सोचना होगा कि हम पहले से उसके लिए सेव करके रखें।
जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये हुआ जीपीएफ पीपीएफ की कहानी। अब जो है कुछ इंश्योरेंस के बारे में बताइए
जी। देखिए बच्चों, आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में आ गई हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे देश में कि इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां एक साथ आ गई, या हमें किन किन चीजों का खतरा महसूस होने लगा जो पहले नहीं था कि आज हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं? देखिए इसकी शुरुआत होती है 1970s के बाद से। जब तक हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे तो होता क्या था कि सब लोग मिलजुल कर काम करते थे, और अगर कोई फैमिली का मेंबर बीमार हो जाए या उसकी ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो जाए तो देयर आर अदर फैमिली मेंबर्स, दोज हु आर गोइंग टू लुक आफ्टर हिज वाइफ और चिल्ड्रन, एंड उसको चिंता नहीं थी कि क्या होगा इनके बाद। लेकिन जब से हम स्टेग्नेंट हो गए हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए हैं, सब अलग अलग रहते हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे भाई ने क्या करना है या माता पिता कहाँ हैं, तो जरूरत पड़ने लगी, हम महसूस करने लगे कि इन केस अगर हमें कुछ हुआ तो हम उसके बाद हमारी फैमिली का क्या होगा। इसलिए इंश्योरेंस की जरूरत 1970s के बाद से ज्यादा पड़ने लगी। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देती हैं, विच इज गोइंग टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन अ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, इन विच वन एग्री टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट और ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन लॉस अगेंस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम।
ठीक है, यानी कि तो ये मैं तय करूंगी, अगर मुझे अपनी इंश्योरेंस करवानी है तो ये मैं तय करूंगी कि मुझे कितने की इंश्योरेंस चाहिए।
बिल्कुल,
इसमें कोई मिनिमम भी है कि इतना मिनिमम लगाना पड़ेगा, ऐसा
जी
कुछ
नहीं
जी।
ये बिजनेस क्लास के लिए अलग, लाइफ का अलग और बाकी चीजों का अलग है।
ठीक है,
लाइफ एक ऐसी चीज है जो कि इनवैल्यूएबल है, जिसकी हम मेजरमेंट ही नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ की कितनी कीमत होगी, ये तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि भाई इन केस अगर कुछ हुआ तो मेरे फैमिली मेंबर्स को इतना पैसा जरूर मिल जाए कि वो अपनी लाइफ इजीली चला सकें। तो आप अपने आप डिसाइड करेंगे कि कितनी अमाउंट का आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना इंश्योरेंस प्रीमियम दे पाएंगे। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि इंश्योरेंस कंपनी एक एग्रीमेंट आपके साथ कर रही है कि भाई इन केस अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, मिसहैप होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बदले में वो आपको इतना पैसा देंगे इन लियू ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज गोइंग टू बी पेड बाय यू पीरियोडिकली। अब पीरियोडिकली से ये एनुअल भी हो सकता है, वन टाइम भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है, एज पर योर कन्वीनियंस। तो आप एक छोटा सा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देंगे बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी दे रही है कि भाई अगर कोई नुकसान हुआ तो वो उसको कंपेंसेट करेंगे।
जी
बिजनेसेस में क्या होता है कि बिजनेसमैन में बिजनेस को बहुत सारे रिस्क होते हैं, फायर का है, फ्लड का है, थेफ्ट का है, कई सारे रिस्क हैं। अगर बिजनेसमैन अपना सारा ध्यान इन चीजों पर लगाए, वो इसी चिंता में रहे कि अगर चोरी होगी तो क्या होगा, आग लग गई तो क्या होगा, तो वो तो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। सो वो अपना अटेंशन प्रॉपरली अपने बिजनेस पर लगाए, अपना मन लगाकर काम करे। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई आप इंश्योरेंस कराइए और अगर कुछ हुआ तो वी आर रेडी टू कंपेंसेट यू, बदले में आपको इतना इंश्योरेंस प्रीमियम हमें देना होगा।
चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से ये बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बोथ टू बिजनेसेस एज वेल एज टू इंडिविजुअल्स। और ये मैं सभी श्रोताओं से और सभी शिक्षार्थियों से ये कहूंगी कि एक बहुत अच्छी एक्टिविटी इसके बाद है, आप जरूर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की कुछ पॉलिसीज को देखिए और उनको पढ़िए और देखिए कि वो क्या क्या सुविधा आपको ऑफर करती हैं। खासकर ये मैं कहना चाहूंगी कि उसके अंदर जो भी फाइन प्रिंट है उसे जरूर पढ़िए, देखिए लायबिलिटी क्या है और आप अंत में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा। और ये सभी चीजें जो है ये आपको एज एन इंडिविजुअल एम्पावर कर रही हैं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकें।
जी
तो थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ यूटीआई का एक बार बहुत नाम सुन रहे थे हम।
यूनिट ट्रस्ट जैसे कि आप बात कर रहे हैं, ये बात होती है यूनिट की, अच्छा? एक यूनिट की, इंडिविजुअल ब्लॉक की। और जैसे कि ट्रस्ट हम बात कर रहे हैं कि फेथ या एक ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट की एक बॉडी थी जिसमें उन्होंने चाहा कि भाई जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटे लेवल से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको हम इस मार्केट में कैसे लाएं। तो हम जैसे आपके इसमें कोर्स में इसलिए शेयर्स भी हैं, डिबेंचर्स भी हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज की बात भी कही गई है जिनकी जानकारी हम सबको नहीं होती और हमारा बहुत छोटा सा निवेश करने का मन है या हम चाहते हैं कि भाई हम भी इस मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कैसे आएं। उस केस में हम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कुछ यूनिट्स को खरीदें।
ठीक है।
एक यूनिट की कीमत 10 रुपए होती है।
अच्छा।
पहले ये था कि कम से कम आपको 100 यूनिट खरीदने पड़ेंगे, लेकिन जब से डीमेटेरियलाइजेशन हो गया है, आप लोगों के डीमेट्स अकाउंट हो गए हैं, तब तक आप जितने मर्जी एक खरीदें या 100 खरीदें, कोई ऐसी बाउंडेशन अब नहीं है।
ठीक है।
किसी समय में ये बाउंडेशन थी कि आपको कम से कम 100 यूनिट खरीदने ही पड़ेंगे।
ठीक है।
यूनिट ट्रस्ट आपसे वो पैसा लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से उनको कुछ प्रॉफिट होता है जो कि नेट एसेट वैल्यूज पर वो कैलकुलेट करते हैं और रोजाना न्यूज़पेपर में वो 2 रेट्स डिक्लेयर करेंगे, 1 रेट इज फॉर बाइंग एंड 1 रेट इज फॉर सेलिंग।
अच्छा।
ये वाले फंड जो ट्रस्ट होती है, यूनिट ट्रस्ट, ये 2 तरह के फंड ऑफर करती है, एक होता है ओपन एंडेड फंड, एक होता है क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडिंग का मतलब कि आप जब चाहें खरीदें और जब चाहें बेचें, आप रोज यूनिट ट्रस्ट को खरीदें, शेयर्स उनके यूनिट्स खरीदें और रोज उनको बेचिए। क्लोज एंडेड में कंडीशन होती है कि 3 साल से पहले आप इन यूनिट्स को नहीं बेच सकते।
ठीक है।
तो आपने 10 रुपए के मल्टीपल्स में यूनिट्स को इनिशियली खरीद लिया, यूनिट ट्रस्ट उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का पैसा लगाकर इन्वेस्ट करते हैं, तो काफी एनालिसिस के बाद, एक्सपर्टाइजेशन के बाद वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और डेफिनेटली उन्हें उनसे रिटर्न मिलता है।
ठीक है।
उस रिटर्न को वो अपने यूनिट होल्डर्स को, जो कि आप लोग हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मेड यू बाय यू इन यूनिट्स।
अच्छा, फिर मुझे ये बताइए, फिर यूनिट और शेयर इसमें फिर क्या अंतर आया? ये तो मुझे वैसी ही चीज लग रही है।
बिल्कुल। तो शेयर को, तो एक शेयर का मतलब होता है हिस्सा।
अच्छा।
वंस यू परचेज अ शेयर ऑफ अ कंपनी, यू बिकम अ शेयर होल्डर। बच्चों आप देखेंगे कि मान लीजिए आज आपके फ्रेंड का बर्थडे है,
ठीक है,
केक कटना है, आप अभी लेट हैं, तो यू मेक अ कॉल टू हिम, भाई मेरा शेयर रखना उठाकर, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। आपने कहा भाई खत्म मत कर देना केक, मेरा हिस्सा बचाकर रखना। तो जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, और आप लॉसेस और प्रॉफिट के दोनों के हकदार होते हैं। साथ ही साथ आपके पास वोटिंग राइट्स भी आ जाते हैं। ये सब चीजें यूनिट्स के केसेस में नहीं होती। यूनिट्स में सिर्फ आपका एक इन्वेस्टमेंट है कि यस दिस मच मनी हैज बीन इन्वेस्टेड बाय यू, वोटिंग राइट आपके पास नहीं है, कंपनी यूनिट ट्रस्ट उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगी कैसे करेगी वो उनका आउटलुक है, बायबैक की आपको गारंटी है कि रोजाना दो रेट हमारे पास आपको मिलेंगे खरीदने और बेचने के, और वो यूनिट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे, लेकिन आप यूनिट ट्रस्ट के मालिक नहीं बनेंगे, आप उसके हिस्सेदार नहीं बनेंगे।
एक बात मैं आपसे पीयूष जी यहाँ पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे फिक्स डिपॉजिट की, तो वो हम बैंक से जाके ले सकते हैं, या हम बात कर रहे थे कुछ स्कीम्स की जो हम पोस्ट ऑफिस में जाकर उनका फायदा उठा सकते हैं, हम ये जो अब यूटीआई की बात कर रहे हैं, ये यूनिट्स खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा या कैसे खरीदना होगा?
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नॉर्मली आजकल तो नहीं निकलते हैं
जी,
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइज करती है, पब्लिक को इंटीमेट करती है कि हम ये नए यूनिट्स लाने वाले हैं। एक तो ये तरीका है नए का। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स को खरीदना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया दो रेट्स अवेलेबल हैं आपके न्यूज़पेपर्स में
जी,
एक खरीदने का और बेचने का
जी।
जब आपको खरीदना है आज की डेट में खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए
जी,
यानी कि एवरीथिंग इज डीमेटेरियलाइज्ड नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी।
ओके,
वंस यू हैव गॉट थिंग विद यू, ऑनलाइन शॉपिंग है, सब कुछ ऑनलाइन आपको करना है, आप अपना ऑर्डर किसी ब्रोकर के पास प्लेस करेंगे और वो आपके लिए आपके यूनिट्स उतने खरीद देगा,
वो भी ऑनलाइन ही होगा
जी। अब फिजिकल ट्रेडिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि शेयर मार्केट में हम गए या किसी स्टॉक एक्सचेंज में गए
और
वहाँ पर हम शेयर खरीद कर लिया जैसा कि मार्केट होती है।
तो ब्रोकर तक हम कैसे हमारी पहुंच होती है अगर हम ऑनलाइन कुछ खरीद फरोख्त कर रहे हैं? तो
मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि बैंक्स भी आजकल ब्रोकरेज का काम करते हैं।
ओके,
बैंकों में ही डीमैट अकाउंट खुलता है।
अच्छा,
या तो आप बैंक्स के थ्रू करें, अदरवाइज न्यूज़पेपर में यूनिट ट्रस्ट वाले एड्रेसेस देते हैं
जी,
कि भाई इन इन पर एड्रेसेस पे आप हमसे उनकी हेल्पलाइन नंबर होते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें और वो आपको बताएंगे कि उनके एजेंट या ऑथराइज पर्सन कौन हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ओके,
चलिए,
अब ये काफी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, बहुत सारी चीजें आज ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता थी।
हाँ,
जैसे यूटीआई का हो गया या यू नो डीमैट अकाउंट हो गया, ये सुना बहुत था डीमैट अकाउंट के बारे में, लेकिन पता आज चला है।
बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो पीयूष जी आपने बहुत अच्छी एक टर्म और है जो अक्सर कही जाती है लेकिन बहुत ज्यादा मुझे क्लैरिटी नहीं है, ये डिबेंचर क्या होता है?
देखिए, डिबेंचर एक तरह का लोन होता है। शेयर में तो मैंने बताया कि आप उस कंपनी के मालिक बन गए, यू बिकम अ शेयर होल्डर, हिस्सेदार बन गए। इन केस अगर कोई कंपनी पब्लिक से लोन लेना चाहती है जिस पर वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे और ये सिक्योर्ड होगा, तो उस केस में कंपनी, कोई भी कंपनी, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के डिबेंचर्स ऑफर करेगी।
ठीक है,
आप एज अ लोन कंपनी को लोन दे रहे हैं, जैसे कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट ना करके कंपनी को दे रहे हैं। कंपनी एश्योर यू टू रीपे द मनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विद सम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपको डिबेंचर मिल गया, लोन मिल गया।
ठीक है,
डिफरेंस ये है कि ना तो आपके पास वोटिंग राइट है, ना आप कंपनी के मालिक हैं, आपको लॉस में बिल्कुल भी शेयर नहीं करना पड़ेगा, आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। डिबेंचर्स मोस्टली सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि इन केस इफ द कंपनी डज नॉट पे यू द मनी देन देयर एसेट्स विल बी सोल्ड ऑफ एंड द पेमेंट इज गोइंग टू बी मेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, सेफ्टी वाला या थोड़ा सा हायर रिस्क वाला।
जी,
इन केस यू आर क्वाइट डायनामिक एंड यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ शेयर मार्केट, यू वॉन्ट एन अर्ली ग्रोथ ऑफ मनी, देन यू कैन गो फॉर शेयर्स। On the other hand, if you are a retired person or you are having very limited amount of savings with you which you want to invest in a market, then you should go for debentures where you will get a fixed rate of interest and normally that is paid to you at the every half year, half yearly you get the money and even after a certain period of time, you will get whole of the money back that has been invested by you in the debentures.
I mean, this is most safest safe option other than the other option.
और safe options में एक और आती है और वो है property और jewellery.
Jewellery.
ये हमेशा आप ही के पास रहेगा.
और आजकल क्योंकि gold rate धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से discuss करना बहुत important हो जाएगा. तो इसके बारे में क्या कहेंगे पीयूष जी आप?
गोल्ड का तो बच्चों देखो आप मानेंगे कि गोल्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं. वंस यू इन्वेस्ट द मनी इन अ गोल्ड, प्रॉब्लम हमें क्या आती है, आपने आज तक बैंक्स के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जहां गोल्ड बैंक बेचते हैं. क्या आपने कभी ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट देखा है जिसमें वो गोल्ड खरीदने की बात करें? नहीं. लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड इज अ वेरी प्रेशियस मेटल. जब भी गोल्ड की बात होती है आवर आईज यूज टू ब्लिंक. दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज टू बी द सेफ एंड सिक्योर एंड द ऑर्नामेंट्स ऑफ द लेडीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी यूज इन द हार्ड टाइम व्हेन सम प्रॉब्लम्स यूज टू अराइज. दैट्स व्हाई द गोल्ड इज गोइंग टू बी कैप्ट एज अ चैनल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. सो आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करें, कहीं एक जगह ना पैसा लगाएं. अलग अलग जैसे पांचों उंगलियां किसी हाथ की बराबर नहीं होती, इसी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट भी सब में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको यूज कर सकें.
थैंक यू वेरी मच पीयूष जी, आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे सभी श्रोताओं को. और मैं सबसे यही कहूंगी कि आप लोगों को बस ये देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट या सेविंग कहाँ करनी है, कितनी करनी है और कैसे करनी है. और इसी के साथ आप सबको आज आप सबसे अलविदा लेते हुए फिर मिलेंगे.